जैसे मान लीजिए आज किसी की बुद्धिमत्ता का कोई वर्णन कर रहा है, कल उस व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो सकती है, बुढ़ापे में स्मृति शक्ति नष्ट हो जाती है, तो उस सत्य कथा नहीं रह गई, बल नष्ट हो जाता है, सौंदर्य नष्ट हो जाते हैं, यहां तक कि शरीर चला जाता है, कि जो कुछ वर्णन किया जाता है सब झूठा है, सत्य नहीं, केवल परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का जो वर्णन है वो सत्य है। सवा अयम सख अनुगीत सत कथा वेदेश गुह्य सुच गुह्यवाद भी, जो वेद हैं वे गुह्य हैं, गुह्य का अर्थ है रहस्यमय, उसे दिव्य अप्राकृत विषयों का वर्णन करते हैं, इसीलिए बहिर्मुख लोगों के लिए वो गोचर नहीं होते हैं। आजकल कितने लोग वेद पढ़ते हैं तो कहते हैं इसमें कृष्ण का नाम कहीं नहीं है, ये बहिर्मुख है, उनको समझ में नहीं आता है, एक एक अक्षर में कृष्ण का वर्णन किया गया है, वेद से सर्व ही अहम एव वेद्य, अहम एव मैं ही वर्णित हुआ हूं, मैं ही प्रतिपाद्य हूं समस्त वेदों में, चाहे वो श्रुति स्मृति पुराण आगम जो कुछ भी हो सब में कृष्ण का वर्णन है। इसको कोई कहे कि कैसे आप बोल रहे हैं कि इसमें हमारा वर्णन है, भगवान कहते हैं कि मैं ही बनाया हूं वेद वेदांत कृत, मैं ही वेद बनाया हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि इसमें क्या वर्णन है। और दूसरा मूर्ख व्यक्ति यदि कहे कि वेदों में कृष्ण का वर्णन नहीं है तो वो तो केवल अपनी बुद्धिहीनता जाहिर कर रहा है, बोले यही पता चलेगा कि ये बोका है, ये कुछ नहीं जानता है, जब वेद बनाने वाला बोल रहा है कि वेद के अक्षर अक्षर में मेरा वर्णन किया गया, मैं ही प्रतिपाद्य, तो लोगों के समझ में नहीं आता है। मुह्यम की जब सूर्य, बड़े बड़े विद्वान भी वेदों के वाक्यों में मोहित हो जाते हैं, इस क्योंकि रहस्य वर्णन किया गया है, परोक्षवाद से वर्णन किया गया है वेदों में, भगवान का वर्णन डायरेक्ट नहीं करते हैं श्रुतियां, इनडायरेक्ट में करती है, और करने वाले जो लोग हैं वो रहस्य वेद भी। सवा अयम सखनगीत सतकथो वेदेश गुह्य गुह्यवाद भी, और जो वचन बोलते हैं ऋषि लोग तो वो भी गुह्यवादी होते हैं, वो भी ऐसी बात बोलते हैं कि सामान्य लोगों को समझ में नहीं आती है, लेकिन रहस्य का निरूपण करते हैं। जैसे एक गुह्य बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे कहा जाए कि भगवान कोटि कंदर्प से भी अधिक सुंदर है, कोटि कंदर्प से अधिक सुंदर है, जबकि लोक में यह वर्णन किया गया है कि भगवान का कोई आकार ही नहीं है, तो करोड़ों कामदेव से अधिक कैसे सुंदर हो गए, यही है रहस्य, कि भगवान का देह है, भगवान का जो स्वरूप है वो जड़ नहीं है, वो चिन्मय है, दिव्य है, ये रहस्य हुआ। लेकिन सामान्य व्यक्ति की समझ में बात आएगी नहीं, वो देखता है कि देह तो मरता है, देह बूढ़ा होता है, देह में रोग है, यदि हम भगवान में भी देह की कल्पना करें तो वो भी तो एक दिन बूढ़ा हो जाएंगे, उनकी भी स्मृति नष्ट होगी, ये सब होगा। इसीलिए शास्त्र वर्णन किस रूप में करता है, भगवान का कोई रूप नहीं है, यह रहस्य वर्णन हुआ। रूप नहीं है मतलब भगवान का प्राकृत रूप नहीं है, रहस्यवादी लोग समझ जाते हैं अच्छा उनका दिव्य रूप है, नहीं तो एक ही शास्त्र ऐसा क्यों वर्णन करेगा, कहेगा भगवान का कोई रूप नहीं है और वही शास्त्र कहता है भगवान कोटि कोटि कंदर्प से भी अधिक सुंदर है रूप नहीं है तो कैसे सुंदर है, इसका अर्थ है कि वे प्राकृत देह वाले नहीं है, देह देही का भेद ही नहीं है भगवान में, उनका जो देह है वही पूर्ण ईश्वर है, पूर्ण आत्मा है, इसको रहस्य कहते हैं। तो इस प्रकार की रहस्य कथाओं से और सत्य कथाओं से सारा वेद भरा पड़ा है, वे कहते हैं कि अरि सखी यही वो पुरुष हैं जिनकी सत्य कथाओं का वर्णन वेदों में, रहस्यमय वेदों में रहस्यवादी ऋषियों ने किया है, यही यही वो पुरुष है। किस प्रकार से इनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है वेदों में, किस प्रकार से गान करते हैं ऋषि लोग, उसी को बता रही है। ये कई सो जगदात्म लीलया सृजत अवत्यतिमत प्रसज्जत, वेद यही वर्णन करता है, यही पुरुष अकेले विश्व की सृष्टि करते हैं, विश्व को मेंटेन करते हैं और विश्व का प्रलय करते हैं, लेकिन संसार की किसी भी वस्तु में फंसते नहीं, निर्लिप्त रहते, न तत्र सज्जते, सब कुछ करते हैं, इतना बड़ा विश्व प्रपंच बनाते हैं, चलाते हैं, पर आसक्त नहीं होते। जबकि दूसरे जीव तो थोड़ा सा बनाए बस फंस जाते हैं उसी में, ये मेरा है मेरा है मेरा है, अहम और मम का अभिनिवेश हो जाता है। लेकिन इस पुरुष में नहीं, अनादिकाल से विश्व सृष्टि कर रहे हैं, चला रहे हैं, प्रलय कर रहे हैं, लेकिन कहीं इनकी आसक्ति नहीं। हम लोगों का अतिशय भाग्य है, जिनका जस इतना सुंदर है, पवित्र है, वे पुरुष हम लोगों के आंखों के सामने हैं। सखी, हम लोगों ने कोटि कोटि जन्मों में बहुत सुकृत किया होगा, इसलिए इनका हम दर्शन कर रहे हैं। अब आगे वे आपस में बात करेंगे तो बताएंगे कि ये क्यों अवतार लिए हैं, ये अपने धाम से यहाँ क्यों आते हैं, बीच बीच में क्यों अवतार लेते हैं। और इसके बाद श्री कृष्ण से संबंधित देश और पात्र की महिमा का निरूपण करेंगे। धन्य है वह ब्रजमंडल जहाँ यह पुरुष चला है, खूब चलता है, और धन्य है जदुवंश जिस वंश में यह अवतार लिया है। इस तरह की बातें स्त्रियां करेंगी, और सबके बाद उन स्त्रियों की प्रशंसा करेंगी जो इस पुरुष की गृहिणी बनी हुई है, पत्नियां बनी हुई है। इस संसार में सबसे धन्य है लोग, क्योंकि स्त्री हैं, इसलिए स्त्रियों के भाग्य के प्रति स्पृहा हो रही है। इस प्रकार से बातचीत करेंगे तो कल भी पूरा इन्हीं का उद्गार रहेगा, हस्तिनापुर की नारियों का उद्गार रहेगा। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यदा यधर्मेण तमो धिवो नृपः जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल। धत्ते भगं सत्यमृतं दयां जसो भवाय रूपाणि दधत् युगे युगे। जदा यधर्मेण तमो धियो नृपः जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल। धत्ते भगं सत्यमृतं दयां जसो भवाय रूपाणि दधत् युगे युगे। अहो अलं श्लाघ्यतमं जदोह कुलं अहो अलं पुण्यतमं मधुर्वनम्। जदेश पुंसां ऋषभः श्रियः पतिः स्वजन्मना चङ्क्रमणेन चांसति।
निसंदेह अधर्मेण अधर्म पूर्वक पाप कर्म से जीवंती केवल देह को कोसने लगते हैं, नृपहा राजागण, तमो धियः तमोगुण से व्याप्त बुद्धि वाले, नृपहा राजागण, तत्र तब एषः ये पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही निश्चित सत्वतः विशुद्ध सत्व गुण से तिला निश्चय धत्ते प्रकट करते हैं भगवान ऐश्वर्य सत्यम सत्य प्रतिज्ञात्व रीताम यथार्थ उपदेशकत्व दयाम भक्त कृपा यशः अद्भुत कर्मत्व भवाय विश्व के पालन के लिए रूपाणि विविध रूप दधत धारण करके प्रकट करके युगे युगे युग युग में समय समय पर एवं भूतस्य नाना अवतारे कारणम आहु। हस्तिनापुर की स्त्रियां भगवान के गुणों का वर्णन कर रही हैं दिखा करके आपस में सखियों को। अब यह बता रही हैं कि हे सखियों, ये पुरुषोत्तम क्यों बार बार अवतार लेते हैं, इस प्राकृत जगत में अपने धाम से क्यों आते हैं। ये कहती हैं, जदा ये धर्मेण तमो धियो नृपा जीवंत तत्र सहिषत्वतः किल धत्ते भगम सत्यमृतम दयाम जसो भवाय रूपाणि दधत जुगे जुगे। हे सखियों, जब जब इस जगत में लोगों की पाप में मति लगती है, लोग अधर्म से जीने लगते हैं और विशेष करके राजागण, जब नृपाहा जो मनुष्यों का पालन करने वाले हैं, जीवों का पालन करने वाले हैं, वे लोग जब तमोधीय तमोगुण से व्याप्त बुद्धि वाले हो जाते हैं, उनके बुद्धि को तमोगुण ग्रस्त लेता है, तो उस समय जीवंती अधर्मेण लोग अधर्म करते हैं, विभेद विरुद्ध कार्य है उसको करते हैं और जीवंती केवल जीते हैं, जीते हैं केवल, इसका मतलब हुआ केवल देह पोसते हैं और कोई कार्य नहीं करते, जैसे आजकल के सब लोग कर रहे हैं, ये जी रहे हैं जैसे वृक्ष जीवित रहते हैं या पशु जीवित रहते हैं, इसे जी रहे सब देखते हैं। अमेरिका में इतनी इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं बनाई गई, इतने बड़े बड़े स्टोर, उसमें आत्मा के लिए कुछ भी नहीं है, केवल देह के लिए, देह को चलाने के लिए, खिलाने के लिए, पहनाने के लिए, चाहे अलंकार धारण करने के लिए, जो कुछ भी है देह के लिए, जो जीवन थी और वो भी अधर्मेण जीवन थी, अधर्म से जीने लगते हैं, विशेष करके राजा लोग। जब राजा की बुद्धि तमोगुण से व्याप्त हो जाए, प्रजा तो अपने आप ही राजा के अनुसार चलेगी। तो इस प्रकार से कहने का आशय है कि जब जब लोगों की बुद्धि अधर्म से ग्रस्त हो जाए, तमोगुण से ग्रस्त हो जाती है और पाप करने लगते हैं, अधर्म करने लगते हैं, तब तब ये पुरुष रूपाणि दधत विविध स्वरूपों को प्रकट करते हैं,
विश्व की स्थिति के लिए, पालन के लिए। और जब विविध रूप धारण करते हैं तो ये अपना भाग प्रकट करते हैं, सत्य प्रकट करते हैं। धत्ते भगम सत्यम रीतम और यथार्थ उपदेशकत्व प्रकट करते हैं, भक्त दया तथा अद्भुत कर्मत्व। बहुत सुंदर श्लोक बोल रही हैं हस्तिनापुर की नारियां। जैसा भगवान स्वयं ही अपने श्रीमुख से कहे हैं, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान स्वयं ही जुगे जुगे शब्द का प्रयोग किए हैं। बारंबार श्री कृष्ण इस जगत में आते हैं, लेकिन रूपाणी दधत विविध रूप को प्रकट करते हैं। जब जब जैसी जरूरत होती है तब तब भगवान इस जगत में आते हैं। कब आते हैं इसको उन्होंने पहले बताया, और क्यों आते हैं दूसरे श्लोक में गीता के बता रहे हैं। कब कब आते हैं तो भगवान स्वयं कहते हैं, जदा जदा ही धर्म से गुला निर्भवती भारत, अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानम सृजामि। जब जब धर्म की हानि होती है, जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर भवति, जब जब धर्म पालन क्षीण हो जाता है और अधर्म बहुत बढ़ जाता है, तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूँ। क्या पर्पस होता है प्रकट करने का? परित्राणाय साधु नाम विनाशाय से दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। साधुओं का पालन करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की सम्यक स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। भगवान इस जगत में आते हैं, इस रहस्य को हम लोगों को जानना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान के अवतार तत्व को जानता है कि सच्चिदानंद घन प्रभु बिना किसी कर्म बंधन के अपनी स्वच्छंद इच्छा से इस जगत में आते हैं और यहाँ की स्थिति को ठीक करते हैं। जो मारने लायक है उनको मारते हैं, जैसे हिरण्यकश्यपु, रावण, कंस आदि, ये लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं, तो भगवान आकर के उनको शांत कर देते हैं। और जो धर्म का पालन करते हैं, भक्त हैं, उनका पालन करते हैं भगवान, धर्म की स्थापना करते हैं, युधिष्ठिर जैसे राजा बना करके। इस प्रकार से श्री कृष्ण के अवतार को जानना जरूरी है, आवश्यक है। हम सब लोग जन्म लेते हैं, लेते रहेंगे और लोग भी जन्म लेते हैं, लेकिन ये सब जानने लायक बातें नहीं है। कोई जन्म ले चाहे मरे, कोई विचारणीय बात नहीं है, लेकिन भगवान इस जगत में आते हैं यह बहुत विचारणीय विषय है। गीता में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म समय दिव्यम। मेरा जन्म अर्थात इस प्राकृत जगत में आना दिव्य है, और यहाँ आकर के जो मैं कर्म करता हूँ वह भी दिव्य है। एवं यो व्यति तत्वतः, इस बात को जो तत्व से जान जाता है, तो वह त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामे किशोर अर्जुन। हे अर्जुन, वह देह त्यागने के बाद मेरे पास आ जाता है, वह पुनर्जन्म में नहीं जाता। तो भगवान के इस जन्म रहस्य को, अवतार तत्व को और उनके कर्म तत्व को जानने से यह लाभ होता है कि जानने वाला कर्म बंधन से पार हो जाता है। तो जिसके जन्म और कर्म को जानने वाला कर्म बंधन से पार हो जाए, उस व्यक्ति को कैसे कहा जा सकता है कि उसका जन्म कर्म साधारण है? भगवान के जन्म कर्म को जानने की ये महिमा है कि व्यक्ति जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से यह जो तत्व है, भगवान क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, उनकी कैसी चेतना होती है, इन बातों को जानना चाहिए। हस्तिनापुर की नारियां आपस में बात करती हैं, भगवान को दिखा दिखा कर रथ पर बैठे हैं, कि अरे सखी देखो, जब जब राजा लोग अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, जीते हैं और तमोगुण से उनकी बुद्धि व्याप्त हो जाती है, क्या हित है, क्या अहित है, आत्मा क्या है, भगवान क्या है, इन बातों का उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं रहता है। इसको तमोधीह कहते हैं,
तमोगुण से व्याप्त बुद्धि। और जब ईश्वर नहीं समझ में आता है, अपना स्वरूप समझ में नहीं आता है, तो व्यक्ति अटपटांग काम करेगा, देह को मैं मान करके देह को ही सुख देना चाहेगा। इसको कहते हैं जीवांति, बस जीना खाना। तो उस समय ये पुरुषोत्तम प्रकट होते हैं विविध रूप, जब जब आवश्यकता होती है तो धारण करते हैं। रूपाणी दधत, रूप पे प्रकट करते हैं। दधत का यहाँ अर्थ प्रकट करना, स्वीकार करना। और विविध रूप प्रकट करके समय समय पर ये अपना भाग प्रकट करते हैं, सत्य प्रकट करते हैं, रीतम, दया और जस। यह पांच चीज का नाम ले रही हैं स्त्रियां। भगवान ये सब प्रकट करते हैं। भगम का अर्थ है ऐश्वर्य। भगवान अपना अद्भुत ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। संस्कृत में ऐश्वर्य शब्द का अर्थ होता है कंट्रोलिंग पावर, ऐश्वर्य, ईश्वर। किस तरह से वे ईश्वर हैं इसको प्रकट करते हैं। ऐश्वर्य के छह अंग हैं और भगवान में भी पूर्ण रूप से हैं। पूर्ण जैसे धन, बल, सौंदर्य, वैराग्य, जस और बल, ये भगवान में पूर्ण रूप से है, अनंत है। इस जगत में जब भगवान आते हैं तो कभी कभी वे अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं भिन्न भिन्न अवतार में। किसी में ज्ञान प्रकट करते हैं, किसी में बल प्रकट करते हैं, किसी में सौंदर्य प्रकट करते हैं। अपने स्वयं ही अवतार में जब भगवान श्री कृष्ण आए तो उन्होंने सारे ऐश्वर्यों को प्रकट किया। और कोई कोई भगवान का अवतार ऐसा होता है जिसमें केवल एक ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं, जैसे बल। हिरण्यकश्यपु का वध करने में भगवान ने अपने बल का थोड़ा सा प्रकाशन किया, वो थोड़ा। कथा कहते हैं, श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ने हिरण्यकश्यपु को वैसे चीर दिया जैसे चटाई बनाने वाला सीख को चीर देता है। इसमें उस पर कोई ध्यान नहीं जाता है उसका, न तो उसको जोर लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भगवान को बहुत जोर लगाना पड़ रहा है सीख करके। वह तो क्रोध का एक अभिनय मात्र था, भगवान में क्रोध हो नहीं सकता है। हमने देखा है चटाई बनाते हुए, वो चटाई बनाने वाला इधर उधर देखता रहता है, फाड़ता रहता है ऐसे। जैसे स्त्रियां स्वेटर बनती हैं, वो दूसरे तरफ दिमाग रहता है लेकिन फिर भी ऐसे आसानी से करती रहती है। कोई बहुत है, मनोयोग लगाना है या मेहनत करना है उसमें नहीं होता है। भगवान इस तरह से हिरण्यकश्यपु का वध किए। किस हिरण्यकश्यपु का? जिस पर इंद्र का वज्र भी उसकी त्वचा को भी नहीं काट पाया था। इंद्र देवता चलाए थे अपना वज्र, जो वज्र पर्वतों को भी विदीर्ण कर देता है। वह घातक वज्र जो दधीची ऋषि की तपस्या से बना हुआ है, वज्र मारे हिरण्यकश्यपु के गर्दन पर, लेकिन उसके गर्दन का चाम भी नहीं छिल पाया। मरने की बात तो बहुत दूर है, यहाँ घाव भी नहीं हुआ, कुछ नहीं, सनिक थोड़ा चोट लगा और लाल लाल हो जाए, ऐसा भी नहीं हुआ। हिरण्यकश्यपु ये मानता था कि उसे मरना नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्मा जी से भी सब बाण लिखवा लिया था, नहीं मरना है, न दिन में, न रात में, न ऊपर, न नीचे, न मनुष्य से, न पशु से, न अस्त्र से, किसी भी चीज से। वह निश्चिंत था कि मैं मर नहीं सकता हूं। और दूसरे सारे देवता भी मानते थे कि ये मरेगा नहीं। स्वयं ब्रह्मा जी चकित थे। लेकिन भगवान प्रकट हुए और उसे पकड़ करके देखते देखते जैसे सीख चीरने वाला चीर देता है, वैसे भगवान चीर कर फेंक दिए। इस अवतार में भगवान ने अपना थोड़ा सा बल का प्रकाशन किया, ऐसा नहीं कि पूरा बल, बहुत नगण्य बल का प्रकाशन किया। इतना बलवान व्यक्ति भगवान के नख से चीर दिया गया। क्या कोई व्यक्ति अपने नख से किसी का वध करेगा? किसी का वध करने चले तो नख ही छत बिछत हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन भगवान जब मारे उसके छाती में अपना नख, तो दलित हिरण्य कसकुर तन भृंगम फट गया है। और छाती फाड़ करके, पेट फाड़ करके, हाथ निकाल कर भगवान स्वयं वाला पहुंचे। वहां पर कोई भगवान का स्वागत करने वाला तो था नहीं, सब देवता भाग गए थे। भगवान स्वयं उस रूप के अनुरूप माला पहन लिए। नृसिंहदेव को फूल की माला शोभा नहीं देती है, तो हिरण्य कश्यपु के आंत की माला वो स्वयं पहन लिए। आंते बहुत लंबी होती हैं और निकाले अनपहन लिए। जब भगवान आंत की माला पहन लिया तो ब्रह्मा आदि ये देख करके जो थोड़ा निकट तो और दूर भाग गए। और तो और अपनी पत्नी भी भाग गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि माता जी आप शांत कीजिए, भगवान को शांत कीजिए, आप जाएंगी तो शांत हो जाएंगे। कितना भी उदंड पति हो लेकिन पत्नी कंट्रोल कर लेती है। बड़े गुमान में लक्ष्मी जी चली, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं जाए। जब देखी तो वो कहीं कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं, कहीं मुझ पर तमाचा चला दिए थे। तो विश्वास नहीं हुआ लक्ष्मी जी को कि वो ब्रह्मा जी साहब कहें कि नहीं इसमें ठीक मूड में नहीं है, मैं नहीं जा सकते। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज को भेजा कि बेटा तुम्हारे चलते भगवान क्रोध हुए हैं, इनका स्वागत करो, शांत करो, तब तो इनको हम लोग स्तुति करेंगे और उपहार देंगे। तो ऐसा अवतार है कि यहाँ कोई निकट नहीं आ रहा है। तो प्रहलाद महाराज गए, सीधा जाकर के प्रणाम किए, खड़े हुए तो भगवान उनको उठाकर गोद में रख लिए, शांत हो गए बिल्कुल। इसके बाद प्रहलाद महाराज ने स्तुति किया। तो इस अवतार में भगवान ने अपना बल प्रकट किया थोड़ा सा। इस अवतार में वे अपना सौंदर्य प्रकट नहीं किए, यद्यपि पूर्ण भगवान है, सौंदर्य है, लेकिन सौंदर्य प्रकट नहीं किए, विकट रूप प्रकट किए, ज्ञान प्रकट नहीं किए इस अवतार में। जब भगवान कपिल देव का अवतार भी लिए तो उसमें उन्होंने अपना ज्ञान प्रकट किया है। भगवान दत्तात्रेय के रूप में अपना ज्ञान प्रकट किया, ऋषभ देव के रूप में ज्ञान प्रकट किया। संसार के सभी बड़े बड़े लोग भगवान कपिल देव से ज्ञान लेने के लिए आते थे, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन है। भगवान दत्तात्रेय के पास प्रहलाद महाराज, जदु महाराज, कार्तवीर, अर्जुन और बहुत बड़े बड़े लोग आते थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो उन अवतारों में भगवान अपना वैराग्य और ज्ञान प्रकट किए हैं। क्या क्या प्रकट करते हैं, जैसे धत्ते भगम, भगम भगम ऐश्वर्यम, ऐसे भगवान का पता नहीं लगता है कि कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका रूप क्या है, उनमें शक्ति है कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं, क्या है। जब नहीं आएंगे तो पता कैसे चलेगा। कोई आदमी कह सकता है कि वैकुंठ में लगता है कि हॉस्पिटल में है, क्या है। तो भगवान यहाँ आ करके अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं लोगों को। सौंदर्य भी एक ऐश्वर्य है, अपने सौंदर्य से कोई व्यक्ति लाखों लोगों को आकृष्ट कर लेता है, कमांड कर लेता है। बल, धन, वैराग्य, वैराग्य भी एक ऐश्वर्य। देखते कितने साधु महात्मा ऐसे हैं भारतवर्ष में जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन लाखों लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट कर लेते। मैंने देखा था कुंभ मेला में, इस कुंभ मेला के पहले एक देवराहा बाबा भारतवर्ष में हो गए हैं, वृंदावन मन की समाधि बनी है। कुंभ मेला में लगभग 60% जनता देवराहा बाबा का दर्शन करने जा रहे थे। हमने पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, रोड भरा जा रहा है, तो वो कहे कि देवराहा बाबा का दर्शन करने जा। तो देवराहा बाबा वस्त्र भी नहीं पहनते थे, एक साधारण वस्त्र हाथ में लेकर के अपने अंगों को कभी वो ढकते थे। तो कोई पूछता था कि बाबा हमें ये तकलीफ है वो तकलीफ है, तो कहते थे राम राम कहो दुख मिट जाएगा, बस यही उपदेश करते थे, राम राम जप। मैंने उनका संग किया है, देखा है, प्रसाद ऐसे देते थे, मंच पर रहते थे, लोग आया करके लाखों लाख लोग दर्शन कर रहे थे। इतना कमांड है उस व्यक्ति, क्यों? वैराग्य के कारण। वैराग्य का ऐश्वर्य है, सौंदर्य का ऐश्वर्य है, धन ऐश्वर्य है, बल ऐश्वर्य। तो भगवान आकर के अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं, धत्ते भगम और सत्यम, सत्य प्रकट करते हैं। सत्य का अर्थ है सत्य प्रतिज्ञात्व, भगवान अपने कहे हुए वचन को किस तरह पूरा करते हैं वे आकर के दिखाते हैं। प्रहलाद महाराज की रक्षा का वचन भगवान ने देवताओं को दिया था। देवता लोग जब भगवान से प्रार्थना किए थे तो अलक्षित वाणी आई थी, बोलने वाला दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन भगवान ने आकाशवाणी में कहा था कि आप लोग डरिए मत, मैं हिरण्यकश्यपु का वध कर दूंगा। तो देवताओं ने कहा कब करेंगे, जब सबको मार ही देगा तब वो करे। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं घबराइए मत, जिस दिन यह प्रहलाद को मारने की चेष्टा करेगा उसी दिन मैं प्रकट होकर उसका वध कर दूंगा। भगवान बहुत पहले प्रतिज्ञा कर चुके थे, अथवा वे नित्य प्रतिज्ञा किए हैं, कौनते प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती नंदन, तुम उद्घोषणा करो कि कृष्ण के भक्त का नाश नहीं होता है। भगवान प्रतिज्ञा के मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता है। तो प्रहलाद महाराज की उचित मौके पर भगवान ने रक्षा कर लिए, जो कहे हैं वो कर लिए। भगवान ऐसे नहीं है कि कुछ वचन किए दिए हैं, प्रतिज्ञा किए हैं और वे भूल जाए। कौन भुलवाएगा उनको और क्या उनमें कमी आ सकती है, वे स्वतंत्र ईश्वर है। तो भगवान प्रकट होते हैं तो उस समय बताते हैं, दिखाते हैं, देखो मैं कितना सत्य प्रतिज्ञ हूँ, जो प्रतिज्ञा करता हूँ वो सत्य। और कोई व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा को सत्य कर ही नहीं सकता है, संभव नहीं, क्योंकि वह प्रकृति के दबाव में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है या सत्वगुण में है, वो क्या करेगा। हम लोग भी प्रतिज्ञा किए थे कि 6:30 बजे पहुंच जाएंगे, लेकिन ट्रैफिक लाइट और ट्रैफिक ने मजबूर कर दिया। क्या प्रतिज्ञा रही अभी तो हजारों पंपलेट में छापते हैं हम लोग कि इस टाइम कथा चालू हो जाएगी, बांटते हैं, लेकिन प्राय झूठी हो जाती है बात। चाहता है व्यक्ति कि हम समय से करें, लेकिन वो दूसरे के अधीन है, पराधीन है। भगवान तो स्वतंत्र है, जो बात वो कह देते हैं जिस समय करना है वो करके ही रहते हैं। भगवान ने पहले कह दिया था देवताओं से, मैं इस तरह से कंस के कारागार में प्रकट होऊंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। जैसे जैसे वो चाहे वैसे वैसे हो गया, फाटक खुल गए, हथकड़ी बेणी खुल गई, पहरेदार सब मरे जैसे सो गए उस दिन, और जमुना जी ने मार्ग दे दिया, भगवान गए चले आए। पांडवों को युद्ध में ले जाते समय भगवान ने कहा था कुंती महारानी से कि जैसे मैं कांचों को ले जा रहा हूँ वैसे कांचों सुरक्षित लौटेंगे युद्ध से, और वैसे ही हुआ। वो पांचों को मारने के लिए कितनी तैयारी थी, विशेषकर अर्जुन को, लेकिन भगवान बचाया सबको, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा सदा सत्य होती है। जब जब ये अवतार लेते हैं तो दिखाते हैं कि मैं किस तरह अपने वचन से पीछे नहीं हटता, जो वेद में प्रतिज्ञा की है शास्त्र में उसको पूरा करते हैं। उसको सत्य प्रतिज्ञत्व कहते हैं। भगवान ने प्रतिज्ञा किया कि मैं विभीषण को लंका का राजा बना करके रहूंगा, तो बनाया गया, रावण का वध करके विभीषण को राजा बना दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान अपने वचन से मुकर गए हैं, पूरा करके ही रहते हैं। अवतार ले लेकर के भगवान इस बात को दिखाते हैं। तो जब इस प्रकार से भगवान अपने सत्य प्रतिज्ञत्व दिखाते हैं तो लाखों लाखों लोग भगवान की शरण लेते हैं। अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं तो वे शरण लेते हैं। सत्य रीतम, रीतम का अर्थ होता है यथार्थ उपदेशकत्व। किसी भी विषय के वास्तविक वक्ता भगवान है, वही ठीक ठीक निरूपण कर सकते हैं। भगवान के अलावा कोई व्यक्ति ऐसा समर्थ नहीं है जो किसी भी तत्व का ठीक ठीक वर्णन कर सके, क्योंकि एक तो जानकारी ही नहीं रहती है लोगों, थोड़ी जानकारी भी हो तो भाषा का ज्ञान नहीं होता। कहते हैं ना, एक वक्ता बोल रहे थे एक दिन, तो कह रहे थे देखो एक तो मैं पूरा पूरा समझ नहीं रहा हूँ शास्त्र, और जो समझ रहा हूं कुछ ग्रहण कर रहा हूं, जो पढ़ रहा हूं तो सारी बात समझ में नहीं आती, थोड़ी सी समझ में आती है, जो समझ में भी आ रही है उसको कहने की शक्ति नहीं है। ऐसा है ना, व्यक्ति जानता है किसी बात को लेकिन कह नहीं सकता उचित भाषा में उचित ढंग से, कई कमियां होती हैं। लेकिन भगवान सब चीज को क्लियर देख रहे हैं, जानते हैं, और जितना बोलना चाहिए यथार्थ बोलते, इसीलिए तो उनका उपदेश भगवद गीता संसार में इस तरह से विख्यात, यथार्थ उपदेश करते हैं। जो जानता है और जान करके बोलना भी जानता है सब चीज ठीक, वही तो उपदेश ठीक से कर सकता है ना। भगवान इस जगत में आते हैं तो उपदेश करते हैं, प्रायः सभी अवतारों में भगवान ने कुछ न कुछ उपदेश किया है। जैसे स्वयं अपने अवतार में भगवान गीता का उपदेश किए हैं, उद्धव जी को फिर उपदेश किए हैं, अनेक ऋषियों को भी उपदेश दिए, भगवान कपिल देव उपदेश देते हैं, भगवान ऋषभ देव उपदेश देते हैं, उपदेश देते हैं। भगवान की बात प्रमाण होती है और किसी की बात प्रमाण नहीं, भगवान की बात को जब वो कहता है तब वो प्रमाण हुआ, तो उसकी बात थोड़े हुई हो। जैसे मान लीजिए मैं अगर गीता से बोल रहा हूं तो मेरी बात तो है नहीं, भगवान बोल रहे हैं जो कुछ वो प्रमाण है। अवतार लेकर के भगवान यह दिखाते हैं कि किस तरह से वही एकमात्र उपदेशक हैं, वही किसी वस्तु के व्याख्याता हैं। जैसे किसी अज्ञ जीव से पूछा जाए कि यह संसार कैसे बना, वो तो कह सकता है कि शुरू में चट्टान था, वो घूम रहा था, उसी से सब हो गए, ये कोई ज्ञान है। और कोई उठेगा किताब लिख देगा कि हम लोग बैनर से जन्म हुए हैं, जाओ खत्म हो गया, ये सब मूर्खता का परिचय है वास्तव में। अच्छा, एक मूर्ख लिख दिया कि हम लोग बैनर से जन्म लिए हैं तो दूसरे लोग उस पर शोध करके नोबेल प्राइज लेते हैं। ये अजीब अजीब बात है, ये मूर्खता देखे। हम लोगों के यहाँ तो इस बात को यदि कोई कह दे तो बच्चे भी नहीं सह पाते। हमने देखा है खेल करते हैं बच्चे तो एक पहेली बुझाते हैं, हरदी के गाब गुब पीतर के लोटा, ई कहनिया ना बुझे से बानर के बेटा, वैसे कहते हैं। उस बेल फल के लिए कहते हैं, हल्दी जैसा गाब गुब भीतर रहता है और पीतल के लोटा जैसा पक जाने पर होता है। यदि तो कोई बुझ गया कि ओ बेल फल बेल, तब तो ठीक है, और नहीं बुझ पाया तो कहते हैं कि बानर का बेटा है, बानर का बेटा है। और यह सुन करके वो लड़का इतना डिसगस्टेड होता है, इतना खीन होता है कि उसको बानर का बेटा कहा जा रहा है। बच्चे इसको सहन नहीं कर पाते हैं कि उनको बानर का बेटा कहा जाए, और ये वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि हम तो बानर का बेटा है। अपने आप कहते हैं।
बानर के बेटा है, मूर्ख कहीं। हम सब लोग ऋषियों के बेटा हैं। आज भारतवर्ष में कोई भी अपना गोत्र देखे पढ़े, किसी के गोत्र का प्रवर्तक कोई बानर थोड़े हैं। रात्रि जी हैं, चाहे वशिष्ठ जी हैं, कश्यप जी हैं, है ना? यही सब है ना। हम सब लोग ब्राह्मणों से जन्म लिए, ब्रह्मा जी के पुत्रों ने हम सबको जन्म दिया। किसी का भी गोत्र देखे वो ब्राह्मण। इस सृष्टि का क्रम भागवत में दिया गया किस तरह से सृष्टि हुई। तो हम लोग ऋषियों की संतान है, ना कि मंकी बानर मूर्खता। मैं यह कह रहा हूं कि भगवान ही वास्तविक प्रवचन कर सकते हैं सही सही। पूछा जाए मनुष्य कहां से उत्पन्न हुआ, भगवान तो बताएंगे हमसे हुआ। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्। मुझसे सबका जन्म हुआ, मुझसे ब्रह्मा जी जन्म लिए, ब्रह्मा जी के पुत्रों से सबका जन्म हुआ। सीधा उत्तर है इसका। लेकिन जब ज्ञान नहीं है तो आदमी क्या बोलेगा? झूठी किताब लिखेगा और पढ़ने वाले भी झूठ है सब। इस तरह किसी भी विषय में, चाहे सृष्टि के विषय में या भगवान के विषय में या जीव के विषय में, कर्म बंधन के विषय में, लोक परलोक के विषय में, भगवान ठीक ठीक बोलते हैं। इसको रीतम कहा गया है शास्त्र में। रीतम प्रकट करते हैं, इस बीच में प्रवचन करके भगवान दिखाते हैं वास्तव में सही ग्रंथ के प्रणेता या प्रवचन करता या उपदेश करता भगवान है और कोई नहीं है। जो व्यक्ति भगवान के बातों को दोहराता है वो तो ठीक बोल रहा है, और बाकी जो अपनी बुद्धि लगाता है वो टोटल गलत करेगा। ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि भगवान यथार्थ भाषण कर सकते हैं। रीतम और दयाम, भगवान इस जगत में जब प्रकट होते हैं तो अपनी दया प्रकट करते हैं, भक्तों से कितना स्नेह करते हैं, लीला द्वारा बात प्रकट होती है। यदि भगवान लीला न करें तो प्रकट नहीं होगी बात। रामचरितमानस में एक कथा है, एक प्रसंग है कि भगवान श्री राम लंका के मैदान में रावण से युद्ध कर रहे थे। रावण के मस्तक को भगवान काट रहे थे बार बार, और वो पुनः पुनः पनप रहा था, नए नए मस्तक हो रहा था। शिव जी का ऐसा वरदान था, और भुजाएं भी भगवान कर देते थे 20 भुजा, तो फिर 20 भुजा जम जाती थी। तो काटते काटते भगवान कुछ परेशानी का अनुभव कर रहे थे, मन में दिखा रहे थे। तो उन्होंने विभीषण जी पर देखा कि क्या बात है, मैं इसकी भुजाओं को और मस्तक को बार बार काट रहा हूं और नए नए हो रहे हैं। तब विभीषण जी ने कहा कि इसके नाभि में अमृत सरोवर है, अमृत कुल, इसी के बल से यह जी रहा है। तब अग्नि बाण मार करके इसके नाभि का अमृत सोख लीजिए, तब इसकी भुजाएं नहीं बढ़ेंगी। यह जब सुना तो रावण बहुत क्रुद्ध हुआ विभीषण पर, और एक शक्ति चलाया जो अमोघ थी, उससे मरना निश्चित था। लेकिन उसमें एक शर्त यह थी कि यदि मनुष्य पर वो चलाया जाएगा तब तो उसका वध कर देगा, पर मनुष्य से भिन्न किसी व्यक्ति पर चलाया गया तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो रावण तो जानता था कि ये मनुष्य है विभीषण, वो चलाया। शक्ति चलाने के पहले ही भगवान जान गए कि चला रहा है, तो तुरंत विभीषण को पकड़ करके भगवान पीछे कर लिया और स्वयं बाण कोसा है उनके देह पर, वो बाण लगा और थोड़े देर के लिए भगवान मूर्छा की लीला की। यह भक्त पर दया, तुरंत विभीषण पाछे ठेला सन्मुख राम सहु सहिसेला। विभीषण जी को तुरंत पीछे कर लिया और स्वयं बाण सहे, विभीषण को बचा ली। भगवान यदि अवतार न ले, न लीला करे, तो कोई कैसे समझेगा कि भगवान अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं।
भक्त कृपा, यहाँ दया का अर्थ है भक्त कृपा। अपने भक्त पर भगवान बहुत स्नेह करते हैं। विभिन्न अवतारों में भगवान ने इसको दिखाया है। एक दिन महाभारत युद्ध में ऐसी घटना हुई कि अश्वत्थामा नारायणास्त्र का प्रयोग कर दिया। नारायणास्त्र का प्रयोग मतलब भगवान नारायण का अस्त्र, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है जो नारायणास्त्र को दबा सके। भगवान ने शंख में अनाउंस किया, जोर से कहा कि सब लोग अपना अपना हथियार डाल दीजिए और हाथ जोड़िए, तब यह अस्त्र शांत हो जाएगा। यदि नारायणास्त्र के सामने हाथ जोड़ दिया जाए, प्रणाम किया जाए, तो वो शांत हो जाएगा। तो सारे वीर डाल दिए अपना अपना हथियार, लेकिन भीमसेन नहीं डाल रहे थे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं क्षत्रिय हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मैं नहीं ऐसा करूँगा, मर जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। भगवान कह रहे थे नहीं, आप अस्त्र डाल दीजिए और पीठ दिखा दीजिए, ये अस्त्र शांत हो जाएगा। कहे नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो भगवान भीमसेन को पकड़ करके जबरदस्ती, और अपनी बात है, अर्जुन स्वयं अपने मुख से कहे हैं कि जैसे नृसिंह भगवान प्रहलाद की रक्षा करते थे, वैसे बड़े बड़े महारथियों के महान अस्त्रों से भगवान मेरी रक्षा करते थे। एक दिन कर्ण बाण चलाया, निशाना लेकर के मस्तक का, अर्जुन का मारने के लिए, और वो भी अमोघ बाण था, अर्जुन का मरण निश्चित था उस दिन। लेकिन भगवान ने देखा अमोघ बाण आ रहा है, तो रथ पर बहुत जोर से मारे अपने पैर से, तो घोड़े घुटने टेक दिए, तो बाण आते आते वो रथ डाउन हो चुका था। तो वो अर्जुन के केवल मुकुट में लगा और मुकुट नीचे गिर गया, मस्तक बच गया, मुकुट गिर गया पीछे। भगवान इसको देख रहे थे कौन कौन अस्त्र चला रहा है और किस तरह हमें अर्जुन की रक्षा करनी है। रात दिन व्यग्र रहते थे अपने मित्र को विजय दिलाने के लिए। भगवान तो संकल्प मात्र से ही सब कर सकते हैं, लेकिन ये दिखा रहे थे कि मैं अपने भक्त से कितना स्नेह करता हूँ, कितना प्रेम करता हूँ। जब इस जगत में आते हैं भगवान, तो दया प्रकट करते हैं भक्तों के प्रति, अपने स्नेह को प्रकट करते हैं। और जसह का अर्थ है अद्भुत कर्मत्व। अद्भुत का अर्थ होता है जो मनुष्य समाज नहीं कर सकता, देवता नहीं कर सकते, ऐसा ऐसा कर्म भगवान प्रकट करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे इंद्र जब वर्षा करने लगे तो भगवान पर्वत उठा लिए। अरे कोई ज्यादा से ज्यादा मनुष्य एक भारी छाता उठा सकता है वर्षा से बचने के लिए, क्योंकि पहाड़ उठा लेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। और वो भी 7 दिन 7 रात अपनी कनिष्ठा उंगली पर भगवान धारण किया। श्रीनाथ जी उसी मुद्रा में रहते हैं, गिरधरण लाल कहते हैं, गिरिराज धारण किए हुए। भगवान उठाए रहे, खाए पिए नहीं, सोए नहीं, एक पग भी हटे नहीं, चले नहीं। यह अद्भुत कर्मत्व। कई योजन में आग लगी थी वृंदावन में, बच्चे हाहाकार करने लगे, गोप सब रोने लगे, हाय हाय, गौवे फंस गई। भगवान उस बढ़ी हुई आग को अपने मुख में पी गए। क्या कोई है अग्नि विभाग का कोई ऑफिसर जो एक अंगार भी पी जाए? फायर विभाग का कोई मिनिस्टर हो, कहा जाएगा कि किसी घर में आग लगती है तो तुम जरा अपने मुख में एक लकड़ी चूसो जलती हुई, तो कर सकता है ऐसा? 2 बार आग लगी थी वन में और भगवान दोनों बार पी गए। एक बार तो गोपों के आंख के सामने, और दूसरी बार उन्होंने कहा कि आंख बंद करो, आंख बंद करो, सब लोग आंख बंद किया और भगवान पी गए। मुखाद अग्नि रजाया था, भगवान मुख से ही अग्नि का जन्म हुआ है, तो मुख को क्या जलाएगा वो? मुख से अग्नि जन्म लिया। चंद्रमा मनसो जात मुखाद अग्नि रजाया था। इस तरह का अद्भुत कर्म भगवान प्रकट करते हैं। 101 फण वाले सांप के मस्तक पर भगवान नृत्य कर रहे थे। एक फण वाले सांप से कोई नहीं खिलवाड़ कर सकता, साधारण सांप से। अरे बिना विष का सांप हो तब भी लोग देख करके भागते हैं, गिरते हैं, देखा गया है सांप सांप सांप, इतना भयावह सांप जिसकी विष की तरंगे जल से निकलती थी और ऊपर उड़ने वाले पक्षी झुलस करके गिर जाते थे, आसपास के वृक्ष मर गए थे, पानी पीकर भगवान के सखा और गौएं भी मर गए थे, भगवान ने उनको जिलाया दृष्टि से, और इसके बाद कालिये के मस्तक पर वे नृत्य करने लगे। नृत्य करने लगे तो बाजा बजाने के लिए देवता इंद्र आदि आ गए, गंधर्व सब आ गए, तत्काल उपस्थित हुए। इसको अद्भुत कर्मत्व कहा जाता है, प्रकट करते। द्वारका में 16108 स्त्रियों से विवाह करना था भगवान को, जितनी स्त्रियां थी उतने रूप धारण किए और उतने भवन घर सब, उतने पंडित, उतने माता पिता, उतने सब लोग, 16108 वसुदेव जी हो गए थे, देवकी जी भी हो गए थे, अलग अलग भवनों में अलग अलग विवाह संपन्न हुआ, और एक ही मुहूर्त में एक ही समय, इसमें भागवतों में लिखा गया। क्या कोई संसार में है एक ही समय में दो स्त्री से विवाह कर ले अलग अलग जगह पर? एक से विवाह करने में ही कितनी परेशानी होती है ये दही जूटा तो वो दही जूटा तो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ देख ही रहा है कितनी परेशानियां होती हैं संसार में। लेकिन भगवान इस तरह से विवाह किए, और विवाह के बाद वे प्रत्येक स्त्री के साथ रहते थे, और कभी भी किसी स्त्री का कोई कंप्लेन नहीं आया कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, या हमारे पास श्री कृष्ण नहीं रहे, हमारे पतिदेव नहीं रहे, सबके साथ रहते थे। यह अद्भुत कर्मत्व, इस तरह से भगवान प्रकट होते हैं तो अपना अद्भुत कर्म कौशल प्रकट करते हैं। भिखमंगा बन करके आए तो ऐसा भीख मांगे पूरा ब्रह्मांड मांग लिया ऐसा यह अद्भुत करवात बलि महाराज से कहे हमको तीन पग भूमि चाहिए, तीन पग भूमि चाहिए। बलि महाराज ने कहा ठीक है, मैं किसी लंबे पैर वाले असुर से नपवा देता हूँ, ज्यादा जमीन मिले नहीं, मैं अपने पैर से नपने भगवान ने छोटा छोटा पैर दिखा रहे थे। बोली महाराज तो सोच रहे थे क्या है, ब्राह्मण को बुद्धि नहीं है, कैसे जीना चाहिए, इसको अधिक मांगना चाहिए, नहीं हम अपने पैर से लेंगे। अपना पैर बढ़ाए तो दो पग में ही पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, एक पग से ऊपर एक पग से नीचे, शरीर बढ़कर भर गया पूरे आकाश में। तृतीय के लिए कोई जमीन नहीं बची तो बलि को डांटने लगे भगवान, ऐसा भीख मांगा जो दाता को गाली देने लगा गाली नहीं बांध करके गिरा दिया गया बलि को, झूठ बोलता है, इसके पास इतना धन नहीं था क्यों देने के लिए कहा। भगवान डांटने लगे कहाँ है तीसरे पग के लिए, क्या जमीन है तुम्हारे पास? तो बलि महाराज ने कहा कि हमारे मस्तक पर चरण रख दीजिए, हमको दास बना लीजिए। इस तरह से कोई क्या पैर फैलाएगा, जब कोई दाता आ जाए और कहे कि आपको जितनी जमीन की जरूरत है ले लीजिए, लेकिन अपने पैर से दो बार नापिए, कितना नापेगा कोई, कितना फीट पैर का प्रसार कर सकता है? लेकिन भगवान के पैर में अद्भुत कर्मत्व तो है। भगवान जब इस जगत में प्रकट होते हैं तब इन लीलाओं द्वारा ये सब प्रकट करते हैं। ये गोपियां कह, ये हस्तिनापुर की नारियां कह रही हैं कि इस तरह से ये पुरुष जब प्रकट होते हैं तो धत्ते भगम सत्यम ऋतम दयाम जस, जस का था अद्भुत कर्मत्व, इस तरह से प्रकट करते हैं युग युग में। यह कह करके अब श्री कृष्ण से संबंधित पात्र और देश की प्रशंसा कर रही है। अहो अलम श्लाघ्यतम जदोह कुलम, अहो अलम पुण्यतम मधुर्वनम, जदेश पुंसाम ऋषभः श्रियः पतिः स्वजन्मना चंक्रमणेन चाञ्चति। अहो आश्चर्य है, और कहती हैं धन्य है, सबसे प्रशंसनीय वंश है जदु महाराज के। अहो अलम श्लाघ्यतमम जदोह कुलम, जदोह कुलम का अर्थ जदु का कुल, जदु महाराज का वंश इस जगत में सबसे अधिक प्रशंसनीय है, प्रशंसनीयतम है, सर्वाधिक प्रशंसनीय। सबके अपने अपने वंश होते हैं, लेकिन जदु का जो वंश है वो श्लाघनीय है, परम प्रशंसनीय है, क्योंकि स्वजन्मना अपने जन्म से इस पुरुषोत्तम भगवान ने इस वंश को अलंकृत किया है। अहो अलम श्लाघ्यतमम जदोह कुलम, अहो अलम पुण्यतमम मधुर वनम। और इस ब्रह्मांड में सबसे पावन सबसे धन्य भूमि कौन है? मधुवन अर्थात ब्रजमंडल, ब्रज भूमि इस संसार में सबसे पवित्र स्थान है। पुण्यतमम जदु महाराज का वंश श्लाघ्यतमम, और मथुरा मंडल पुण्यतमम परम पावन भूमि है। जदुवंश को स्वजन्मना जदेश पुंसाम ऋषभ श्रियः पति, क्योंकि इस पुरुषोत्तम में पुरुषों में श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने स्वजन्मना अपने जन्म द्वारा जदुवंश को अलंकृत किया है, और चंक्रमणे न भ्रमण द्वारा रास विलास द्वारा विविध प्रकार से चलने द्वारा ब्रजमंडल को अलंकृत किया। धन्य हो गया इस पुरुष से जो भी संपर्क में आया वो धन्य हो गया, तो वंश धन्य धन्याति धन्य हो गया है सखियो इस पुरुष के जन्म लेने से। और जिस भूमि में इन्होंने गोचारण किया है, रास विहार आदि किया है, जहाँ ये बिना जूता के पैदल घूमे हैं, वह ब्रजमंडल सबसे अधिक पावन देश, सबसे अधिक पावन देश। अलम पुण्यतमम, एक तो पुण्यतमम कहते हैं, और संस्कृत में अलम का अर्थ होता है पर्याप्ति, सीमा, सीमा हो गई अब, ऐसा पवित्र स्थान ब्रह्मांड में कोई नहीं, कहीं नहीं है। वैकुंठ भी इतना पवित्र नहीं है जितना ब्रजमंडल, जितना धन्य, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है यह। यह बात तो कई बार कही गई है, लगता है कि वैकुंठ में भगवान विमान पर घुमा करते हैं, ऐश्वर्य से उनके चरणों का स्पर्श भूमि को नहीं मिलता है क्या, लेकिन ब्रजमंडल में वे बिना पदत्राण के घुमा करते थे, बालू में लौटते थे। वो सबसे अधिक पावन देश है, और किसी व्यक्ति को मन में मनोरथ रखना चाहिए कि कभी कभी ब्रज भूमि में जाना चाहिए, जाकर के वहां की रज भी लगाएं शरीर में, केवल रहे भी तब भी पवित्रता लेकर के आएंगे। इधर देह अपवित्र हो जाता है, मन आदि सब अपवित्र हो जाते हैं, इसको ब्रजमंडल में कभी कभी जाकर के शुद्ध करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। ऐसे भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, और प्रायः जो भी अवतार लेते हैं मनुष्य का भगवान, तो किसी न किसी वंश में लेते हैं। जैसे भगवान ऋषभदेव प्रकट हुए प्रियव्रत महाराज के वंश में, और भगवान श्री राम प्रकट हुए सूर्य वंश में, महाराज इक्ष्वाकु के वंश में। लेकिन हस्तिनापुर की नारियां कहती हैं कि सबसे अधिक प्रशंसनीय वंश है तो जदु महाराज, क्योंकि ऋषभ पुंसाम ऋषभ श्रियापति स्वयं अवतारी लीला पुरुषोत्तम भगवान इस वंश में प्रकट हुए। श्लाघनीय, श्लाघा का अर्थ होता है प्रशंसा, और श्लाघनीय का अर्थ प्रशंसनीय, और श्लाघनीय तमम श्लाघ्य तमम का अर्थ है सबसे अधिक प्रशंसा का पात्र अब इससे ग्लोरियस वंश कोई नहीं, जदु महाराज के वंश। यद्यपि और भी वंश है, जैसे ब्रह्मा जी से चलने वाले अनेक ब्राह्मणों के वंश हैं, ऋषियों के वंश हैं, लेकिन जदु महाराज का वंश ही सबसे अधिक प्रशंसनीय है, क्योंकि इसी वंश को इस पुरुष ने स्वीकार किया है, इसमें प्रकट है। धन्य है जदुवंश और धन्य है मथुरा मंडल, एक को स्वजन्मना और दूसरे को संक्रमणे न भ्रमणे न अंचति अलम करोती, अलंकृत किया है इस पुरुष ने। वास्तव में हम लोगों का तो यह अनुभव है कि ब्रजभूमि कितना पावन है, कितनी भगवान के प्रति भक्ति है वहाँ, ये तो देखी हुई बात है। आज भी चाहे संसार में कितना भी माया का प्रचार है, कुछ भी तमोगुण है, लेकिन ब्रजमंडल में आज भी भगवान के प्रति कण कण में प्रेम भरा हुआ है, उस भूमि की कोई तुलना नहीं है कहीं भी। पुण्य तमम शब्द का अर्थ है पवित्र करने वाले स्थान में सबसे अधिक पवित्र। कोई व्यक्ति देश काल का सेवन करता है कि हम इस देश में जाएं वहाँ पवित्र होंगे, गंगा जी में स्नान करके पवित्र होंगे, इस कुंड में स्नान करके इस कुंड में, लेकिन वृंदावन जाना ही व्यक्ति को बहुत पवित्र कर देगा। यह निर्विवाद बात है कि गंगा जी में स्नान करने से व्यक्ति के पाप कट जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, या और भी तीर्थों में, परंतु वृंदावन जैसी पवित्रता नहीं आ सकती है कहीं भी। वहां पर एक परमाणु है, जाने वाले को भगवान कृष्ण के प्रति एक अलक्षित आकर्षण उत्पन्न होता है। देखने वाले बड़े बड़े नास्तिक भी बदल जाते हैं वहां वृंदावन आकर, जो मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं, भगवान के नाम कीर्तन को नहीं मानते और नहीं मानते, लेकिन वहां जाने के बाद इनका दिमाग डोल जाता है कि वास्तव में भगवान किसी विग्रह में भगवान हैं, ये प्रभाव पड़ता है। और जब देखते हैं कि लाखों लाख लोग गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, तो क्या कोई अपनी नास्तिकता भिड़ाएगा वहाँ, उसको तो देख करके ही समझ जाते हैं कि अरे बात कोई ना कोई सच्चाई है इसमें। इतने लोग क्यों घूम रहे हैं, इतना जोर से परिश्रम कर रहे हैं। हमारे गांव से एक बार एक लड़का गया था जन्म द्वितीया के दिन वृंदावन मथुरा, तो देखा लोगों को स्नान करते हुए, कॉलेज में पढ़ने वाला व्यक्ति था, बनारस पढ़ता, तो देखा स्नान करते हुए भीड़ उमड़ी हुई, तो वो कहता है भक्ति करने वाले लोग भी बहुत ऐसा कहता, भक्ति करने वाले लोग भी बहुत। उसका एक प्रभाव पड़ता है। कुंभ मेला में कोई जाए प्रयागराज चाहे हरिद्वार चाहे उज्जैन नासिक, तो उस समय समझ में ये बात आती है कि अभी भी धर्म से प्रेम करने वाले लोग बहुत हैं, बहुत हैं। इस तरह से ये सब दृश्य वृंदावन में बहुत, वृंदावन का एक एक स्थल परम पावन है। जमुना के तट पर कोई जाए, चाहे राधा कुंड पर जाए, गिरिराज जी के तलहटी में जाए, बरसा में गोकुल नंदगांव कामवन आदि बद्री कहीं भी, और सर्वत्र एक ही महामंत्र है ब्रज में श्री राधा। वहां पर ये कृष्ण का नाम लेने में अच्छा नहीं लगता, श्री राधा श्री राधा, ये प्राय यही चलता है, क्योंकि ब्रज में श्री कृष्ण दास है, राधा रानी ही स्वामिनी है। कोई व्यक्ति कहता है राधा रानी की कृपा होगी तो हमको ब्रजवास मिलेगा, उनकी कृपा होगी, हमने कभी नहीं सुना है किसी को कहते हैं कृष्ण की कृपा होगी तो ब्रज में आएंगे, नहीं राधा रानी की कृपा होगी तब ऐसा ही कहते हैं। राधे राधे सब लोग बोलते, पहरा देने वाले भी रात में राधे श्याम बोलते, राधे श्याम। और बहुत पवित्र शब्द लगता है, अगर मथुरा में आप खड़ा होइए वृंदावन जाने के लिए तो रिक्शे वाले टेम्पो वाले कहते हैं वृंदावन 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 चलना है वृंदावन वृंदावन वृंदावन, कोई गोवर्धन गोवर्धन गोवर्धन, और वृंदावन में है तो कोई मथुरा मथुरा गोवर्धन, ऐसे यही शब्द निकलते हैं। और आज भी आप देख सकते हैं कि वृंदावन एक ऐसा स्थान है जहाँ की दीवालों पर भगवान का नाम पूरा लिखा हुआ है, श्री राधा या राधा कृष्ण सब नाम सर्वत्र लिखा हुआ है। ऐसा स्थान दूसरा कोई नहीं है जहाँ इतना नाम भगवान का लिखा गया है दीवालों पर, वृक्ष पर, फूल पर, तो जगह भगवान का नाम लिखा है। बहुत पवित्र स्थान है, जिसे सुविधा हो समय हो तो साल में एक बार जरूर वृंदावन का फेरा देना चाहिए, घूमना चाहिए, और नहीं तो कम से कम दो चार बरस पर जरूर जाना चाहिए। वृंदावन सबसे पावन भूमि है और सबसे प्रशंसनीय वंश है जो उनकी स्त्रियां कह रही हैं, और अगले श्लोक में द्वारका की प्रशंसा कर रही हैं। ऐसे है, अहो बत पुण्य जसस करी, अहो बत स्वर जसस तिरस करी, कुशस्थली पुण्य जसस करी भुव जदेश। अवलोकम पश्यन्ति सब श्री ने। अब द्वारका की प्रशंसा कहती हैं कि अरे सखियों, धन्य है द्वारका। द्वारका ऐसी नगरी है जो स्वर्ग के जस का तिरस्कार कर रही है। अहो बता स्वर जसस तिरस्करी। अब तक तो स्वर्ग की बहुत प्रशंसा थी, स्वर्ग की बहुत प्रशंसा थी कि स्वर्ग बहुत अच्छा है, वहाँ अमृत पीने को मिलता है, विमान मिलता है, सब कुछ, बहुत लंबा जीवन है। लेकिन द्वारका ने स्वर्ग का तिरस्कार कर दिया, स्वर्ग की कीर्ति को धूल में मिला दिया और पृथ्वी के जस को बढ़ा दिया। पुण्य जसस करी भुआ, पृथ्वी के पावन जस को द्वारका ने बढ़ा दिया, क्योंकि द्वारका पृथ्वी पर है, स्वर्ग से भी अधिक, वैकुंठ से भी अधिक जस बढ़ा दिया। क्यों? इस द्वारका में पसंत नित्यम जदनु ग्रहेशितम स्मृताम अवलोकम स्वपतिम स्मृत प्रजा। क्योंकि द्वारका की प्रजा नित्य ही अनुराग से भरी हुई कृष्ण की दृष्टि और मंद मुस्कान से युक्त मुख को देखती रहती है। द्वारका के लोग धन्य हैं जो श्री कृष्ण के मुख को देखते रहते हैं। कैसी कैसा मुख? अनुग्रहेशितम स्मृतावलोकम। श्री कृष्ण अनुग्रह से अपना मान करके देखते हैं द्वारका के लोगों को कि हमारे जन है, हमारे स्वजन है, इस स्नेह भरी दृष्टि से देखते हैं और स्मितावलोकन मंद मुस्कान के साथ देखते हैं, स्मित के साथ देखते हैं। यह सुख स्वर्ग में नहीं है, स्वर्ग में कहाँ भगवान का दर्शन मिलता है। द्वारका में प्रजा अपने पति को देखती है, स्वपति मन आत्मा के पति को, आत्मा के पति वास्तव में कृष्ण। कोई दूसरा व्यक्ति देह का भले पति हो सकता है लेकिन आत्मा के पति भगवान है, स्वपति का अर्थ है यह। वास्तविक भाई या वास्तविक पति, वास्तविक पुत्र या पिता, सब कुछ कृष्ण है। द्वारका के लोग अपने वास्तविक पति को देखते रहते हैं, स्वामी को, मंद मुस्कान के साथ। द्वारका में भगवान ऐसा नहीं है कि कोई भारी समस्या में पड़ गए हैं, प्रॉब्लम में, और उनकी मुस्कान गायब हो गई है, नहीं, ऐसा नहीं। स्मित अवलोक, मुस्कुरा करके भगवान देखते हैं। और अनुग्रह ईशितम, ईशितम कहते प्रेरितम, कृष्ण किसी को देखते हैं द्वारका में तो अनुग्रह भरी दृष्टि से देखते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे को देखती है। माँ अपने बच्चे को देखती है तो उसकी दृष्टि में एक स्नेह झलकता है अपने आप, ये स्वभाव है माता का पिता का। भगवान जब द्वारका के लोगों को देखते हैं तो संबंध में जुड़ कर स्नेह से देखते हैं, हमारे हैं, हमारे पोष्य हैं। और जनता उनको देखा करते हैं, भगवान को देखती है, भगवान उसको देखते हैं और यहाँ के लोग भगवान को देखते हैं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण का दर्शन स्वर्ग में नहीं हो सकी, इसलिए द्वारका स्वर्ग से भी बढ़ करके, स्वर्ग में और सब कुछ है लेकिन इस प्रकार से भगवान का दर्शन कहाँ है। भगवान मुस्कुराते होंगे और ये करते हैं, अरे ज्यादा से ज्यादा कोई श्री विग्रह स्थापित कर लिया होगा स्वर्ग में, मूर्ति देखता होगा कि भगवान प्रकट ऐसे कहाँ देखते हैं। द्वारका के लोग धन्य है जहाँ उनको भगवान की अनुग्रह भरी दृष्टि मिलती है और मुस्कान के साथ मुख दर्शन करने को मिलता है। धन्य है द्वारका, द्वारका इस पृथ्वी पर है इसलिए पृथ्वी की कीर्ति को स्वर्ग से भी अधिक बढ़ा दिया। लेकिन स्त्रियां सबसे पहले ये कह रहे हैं कि द्वारका स्वर्ग की कीर्ति को मिट्टी में मिला दिया, मतलब स्वर्ग कुछ भी नहीं है उसके आगे। सबसे बड़ा सुख है जीवन में भगवान का दर्शन, इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि श्री विग्रह का दर्शन किया करे। स्वर्ग में वह सुख नहीं है जो द्वारका में, इसीलिए द्वारका इतनी महिमा। तो इस तरह से देश की प्रशंसा की, और श्री कृष्ण से संबंधित वंश की प्रशंसा की। अब श्री कृष्ण के पत्नियों की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि ये स्त्रियां हैं अतः स्त्रियों के सौभाग्य को देख करके ये तरस रही हैं। अब कहती हैं, नूनम व्रतस्नान हुता दिनेश्वरः समर्चितो यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति या सख्यधरामृतं मुहुः ब्रज स्त्रियो सम्मुहुर्जदास। और ध्यान देना चाहिए कि ये सारी बातें सब लोग सुन रहे हैं और स्वयं भगवान बड़े ध्यान से इन बातों को सुन रहे हैं। बहुत सुंदर भगवान को लग रहा है सब वर्णन। तो अंत में स्त्रियां कहती हैं कि हे सखियों, यस्य अस्य गृहीत पाणि भी, इस पुरुष के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा जिन स्त्रियों का पाणि ग्रहण हुआ है, जिनके साथ इस पुरुष ने विवाह किया है, उन स्त्रियों ने जन्म जन्मांतर में निश्चित ही बहुत व्रत किया होगा, तीर्थ स्नान किया होगा और दान दिया होगा और इसी ईश्वर की आराधना की होगी उन्होंने। जन्म जन्मांतर में श्री कृष्ण की आराधना किया होगा उन लोगों ने, बहुत पुण्य किया होगा जिसके कारण आज इनकी गृहिणी बनी हुई है। और गृहिणी बनी हुई है तो सबसे बड़ा इनको क्या सौभाग्य मिलता है भगवान की पत्नियों को, कि ये इनके अधरामृत को बारंबार पीती रहती है। पिबंत या सख्य अधरामृतम, अधरामृतम का अर्थ है ये श्री कृष्ण के ओठों को चुनती रहती हैं, अधरामृत पीती रहती हैं। कितना बड़ा भाग्य है इसके द्वारा स्त्रियों के मन में जो श्री कृष्ण के प्रति उज्ज्वल रस है वो व्यक्त हो रहा है। ये तो इतनी गोपनीय बात तो कैसे कह सकते थे, और भगवान सुन रहे हैं। बाद में यह भी वर्णन है कि भगवान हंस करके अभिनंदन भी किए जाने से पहले, देखे ऐसे छत पर हंस करके उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ठीक बोल रही। धन्य है वे स्त्रियां जिनके साथ इस पुरुष ने पाणि ग्रहण किया, गृहीत पाणि भी, विवाह में एक विधा है पाणी ग्रहण की, पाणी इसको कहते हैं, और वैदिक मंत्र के साथ पुरुष स्त्री का हाथ पकड़ता है, पाणी पकड़ता है, इसको पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। पाणी ग्रहण संस्कार का मतलब है कि वह व्यक्ति एक व्रत लेता है, जीवन में प्रतिज्ञा करता है कि मैं इसका पालन करूंगा। स्त्री समर्पण करती है और पुरुष उसके पालन की प्रतिज्ञा करते हैं। हाथ पकड़ने का अर्थ यह नहीं है केवल बस हाथ पकड़ लिया बस जिम्मेदारी खत्म हो गई। हाथ पकड़ने का मतलब बस जीवन भर के लिए हाथ पकड़े, उसको अपनी शरण में रख। जिन स्त्रियों का पाणी ग्रहण इस पुरुष ने किया है उन्होंने बहुत बहुत पुण्य किया है। क्या क्या? नीनम व्रत स्नान होता दिनेश्वर समर्चित, व्रतों का आचरण किया होगा, बहुत बहुत जन्मों में बहुत व्रत किया होगा। व्रत करने से ही सफलता मिलती है। उन्होंने उपवास किया होगा, कृच्छ चंद्रायण आदि व्रतों का पालन किया होगा, और तीर्थों में स्नान किया होगा तथा हवन किया होगा। होता हवन के दो अर्थ हो, अग्नि में हवन किया होगा, चाहे योग्य पात्र को दान दिया होगा, खिलाया होगा खुद। इसलिए उस पुण्य के प्रभाव से कृष्ण इनको पति के रूप में मिले हुए, इसलिए वो स्त्रियां धन्य। सबसे बड़ा उनको सौभाग्य मिलता है कि श्री कृष्ण को अपने पति रूप में पा करके उन्हें अपने आलिंगन में लेती हैं और बारंबार कृष्ण के अधरामृत को पीती रहती। पीबंत यह सख्यधरामृत मुहु, बारंबार पीती रहती हैं। जिस अधरामृत की याद करके ब्रज की स्त्रियां मूर्छित हो जाती थी। इतना सुंदर है, इतना मनोहर है भगवान का अधरामृत, दिव्य सच्चिदानंद घन शरीर का वो अधर और अधर का रस, गोपियां उसकी याद करके मूर्छित हो जाती थी। रात्रि में रास विहार आदि के समय उनको अवसर मिलता था कि श्री कृष्ण के मुख को चूमें, श्री कृष्ण के अधर को पीएं। गोपियों को ऐसा अवसर मिलता था, परंतु दिन के समय जब वो याद करती थी कि रात्रि में श्री कृष्ण के ओठों को हमने चूमा है, उसकी इतनी स्प्रिया होती थी कि वो दिन में मूर्छित हो जाती थी उसकी अभिलाषा से। गोपियों का प्रेम सदा ज्यादा दिखाया गया है, उस अधरामृत की याद करके मूर्छित हो जाती थी जदा से। अब ये स्त्रियां दो दो रहस्य का उद्घाटन एक साथ कर रही हैं। भगवान भी सुन रहे हैं, जो युधिष्ठिर महाराज आदि सब सुन रहे हैं। कहते हैं तो इसके द्वारा पता चल गया कि ब्रज की स्त्रियां भी कृष्ण के अधरामृत को पीती थी। भगवान की लीला छिपी हुई नहीं रह सकती है, वो प्रकट है। भगवान भी सुन रहे हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण सुन रहे हैं और महाराज युधिष्ठिर आदि सुन रहे हैं, और कोई भी इस बात को सुन करके यह नहीं कहा कि क्या बकवास कर रही हो फलती, अरे अपनी स्त्री अधरा मृत पियो तो ठीक है, लेकिन ब्रज की स्त्रियां बिना विवाह किए ऐसा ये बात सुनने में अटपटांग है, लेकिन भगवान की लीला वास्तव में सब समय परम मान्य है। लोग गोपियों का बहुत आदर करते थे, भीष्म पितामह की स्तुति में आई है गोपियों की बात, सब लोग बहुत श्रेष्ठ समझते थे। हस्तिनापुर की स्त्रियों को भी पता हो गया था कि गोपियां कितना भगवान से प्रेम करती हैं। जिस अधरा मृत के लिए मूर्छित हो जाती थी, उस अधरा मृत को ये द्वारका की स्त्रियां भगवान की पत्नियां निरंतर पीती रहती, ये मुहु का तो बारम्बार पीती रहती। धन है यह सुख उनको प्राप्त है, पति मिला है तो ऐसा मिला। भगवान जिसके पति मिले हैं, स्त्रियों ने निश्चित बहुत तप किया होगा, दान दिया होगा और तीर्थों में स्नान किया है। व्रत स्नान, केवल स्नान शब्द है, स्नान का अर्थ यह नहीं है कि बाथरूम में स्नान किया होगा, इसलिए यह स्नान का अर्थ है तीर्थ स्नान। गंगा जी में बार बार नहाया होगा, नहा करके दान दिया होगा, मांगा होगा भगवान से कि हमको आप पति रूप में मिलिए, इसीलिए ये पुरुष पति रूप में मिले हुए किस तरह से भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं, विचारणीय हैं, सब धन्य हैं वे स्त्री। और उसके बाद वे कहती हैं कि यादिर्ज शुल्के न हृता स्वयंबरे प्रमथ चैद्य प्रमुखा निशुस्मिण प्रदुम्न सांबाम सुता दयो परे जाश्चा हृता भौम वधे सहस्त्र। कौन कौन स्त्रियों से भगवान ने विवाह किया है उसको कह रही हैं कि कुछ स्त्रियों का अपहरण करके भगवान ने विवाह किया, इस पुरुष ने विवाह किया, चैद्य प्रमुख राजाओं को मथ करके, मतलब शिशुपाल आदि राजाओं को मथ करके, द्रसंध आदि को हरा करके और हरण किया, जैसे रुक्मिणी आदि कई स्त्रियों को भगवान ने स्वयंवर में ऐसे लाया था राजाओं को परास्त करके, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। रुक्मिणी जी का हरण किया था जिसमें शिशुपाल और जरासंध मुख्य राजा थे, उनको हरा करके, और जिनके पुत्र प्रद्युम्न सांब आम्ब हैं, सांब जामवती के पुत्र थे और आम्ब नग्नजीति के पुत्र थे। नग्नजीति को भी भगवान ने प्राप्त किया था राजाओं के शान तोड़ करके, और जामवती को प्राप्त किया था जम्बवान को परास्त करके, वीरता का मूल्य चुकाया था। और भी याश्चा हृता भौम वधे सहस्र सह, और 16,000 स्त्रियां जो भौमासुर का वध करके प्राप्त हुई थी, एता परम स्त्रीत्वमपास्त पेशलम निरस्त शौचम बत साधु कुर्वते जासाम गृहात पुष्कर लोचन पते न जात पैत्य हृतभिर हृदय स्पृशन। यही अंतिम श्लोक था स्त्रियों का। ये कह रहे हैं कि सखियों, ये 16,108 स्त्रियां वास्तव में ये क्या धन्य है, हम क्या कहें, इन्होंने स्त्री जाति को धन्य कर दिया, स्त्री जाति को धन्य कर दिया। ऐसे पुरुषों का कहां सौभाग्य है कि श्री कृष्ण के अधरामृत को पिए या इतना प्रेम करें। स्त्रियों को ही सबसे ज्यादा सौभाग्य मिला कृष्ण से प्रेम करने का। इस संसार में भी आदमी देखा जाता है, चाहे और संबंध कितना भी निकट हो, परंतु पति और पत्नी का संबंध ही सबसे अधिक निकटतम संबंध देखा जाता है। और यह संबंध भगवान के साथ जिस स्त्री का हुआ है, वो स्त्री धन्य है, ये तो कहना ही क्या, उसके कारण सारी स्त्री जाति धन्य हो गई। यतः परम स्त्रीत्वमपास्त पेशलम निरस्त शौचम बत साधु कुर्वते, स्त्री जाति में एक अपेशलम है, एक अशोभा है, वह क्या, उसे परतंत्र रहना होता है। परतंत्रता अर्थात स्वतंत्रता का अभाव स्त्री जाति की एक अशोभा मानी जाती है। जो रहना ही है, लेकिन एक अच्छी बात नहीं है किसी के अधीन रहा जाए। और स्त्री को अशुद्ध माना जाता है, निरस्त शौचम बत साधु कुर्वते, स्त्रियों को निरस्त शौच माना जाता है, खास करके मासिक धर्म आदि के कारण स्त्री को माना जाता है कि यह अशुद्ध जाति की है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्री को हीन माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है और अस्वतंत्र माना जाता है। परंतु जब से भगवान की पत्नियां हुई, तो इन्होंने स्त्री जाति को पुरुष से कई गुना अधिक बड़ा बना दिया। अब देखिए, जहां तक अस्वतंत्रता का प्रश्न है, पराधीनता का, तो ये स्त्रियां पराधीन नहीं थी, परम ईश्वर सुप्रीम कंट्रोलर इनके अधीन थे, ये बता रही है वो स्त्रियां। इस श्लोक में यही जासम गृहात पुष्कर लोचन पति न जातु पैत्य हृतभे हृदय स्पृशन, जिनके घरों से कमल नयन भगवान कभी बाहर नहीं जाते हैं। आहृति भी, आहृति का अर्थ सुंदर सुंदर वचनों से, चाहे पारिजात आदि उपहारों से इनको प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। वो कुछ मांगती हैं तुरंत जाकर के लाते हैं, तो वे परम ईश्वर को तो कंट्रोल कर रही हैं, तो उनमें कहां पर अधीनता रही। जो ब्रह्मा और शिव को अपने कंट्रोल में रखते हैं, काल को भी अपने कंट्रोल में रखते हैं, उनको अपने कंट्रोल में स्त्रियां रख रही हैं, तो परतंत्रता का दोष तो खत्म हुआ स्त्री जाति धन्य है। और परम पवित्र, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान, ऐसे परम पवित्र, परम पावन, परम ईश्वर भगवान जिनको चुनते हैं, जिनको अपने घर में रखे हैं, और यहाँ तक कि वो पारिजात लाते हैं, वस्तुएं लाते हैं, ले ले करके खुशामद करते हैं कि वो खुश रहे, तो इससे सिद्ध हुआ कि वास्तव में इन स्त्रियों ने स्त्री जाति की जो पराधीनता थी और जो अशुचित्व था उसको दूर कर दिया, धन्य कर दिया। इतना भगवान के साथ निकटतम संबंध पुरुषों का नहीं है जितना स्त्रियों का है, इसलिए स्त्री जाति ही श्रेष्ठ। परम शब्द उस श्लोक में लिखा गया है, एता परम स्त्री तुमपास्त पेशलम, परम का अर्थ है कि ये स्त्रियां करेंगे सखी, इन लोगों का जो जन्म हुआ, जन्म क्या हुआ, केवल स्त्री जाति को धन्य करने के लिए जन्म हुआ इनका, इन्होंने धन्य कर दिया। आज कोई इतिहास पढ़ेगा कि श्री कृष्ण के साथ किन किन लोगों ने प्रेम किया, तो स्त्रियों का ही स्थान सबसे पहले आएगा, ब्रज के गोपियों का, और उसके बाद द्वारका की स्त्रियों का, यही स्थान आता है। ये पुरुष भी बहुत प्रेम किए भगवान से, लेकिन जितना स्त्रियों ने किया, जितना निकट भगवान के हुए और जितना भगवान उन्हें प्रेम दिए, आदर किए, उससे कम ही पुरुषों को दिए। यद्यपि भगवान का जो प्रेम है पुरुषों के प्रति ये कंप्लीट है, पूर्ण है, अर्जुन के साथ या वसुदेव जी के साथ या ब्रज के सखाओं के प्रति, माता वसुदेव जी, नंद महाराज, सब कुछ ठीक है, लेकिन भगवान से इतना निकट, कोई संकोच नहीं, भगवान की रात दिन सेवा करना, उनका केस, उनके केसों में कंघी करना, तेल लगाना, का मसाज करना, पंखा झलना, पानी गर्म करके देना, भोजन करना, भोजन करते समय पंखा झलना, सब प्रकार से सेवा करने का जो भाग्य मिला उन स्त्रियों को मिला हुआ है, इसलिए ये धन्य है, और ये स्त्री हैं, इसलिए इन्होंने स्त्री जाति का मुख उज्ज्वल कर दिया। खास करके जब ये कहते हैं कि जासन गृहात पुष्करलोचना पति न जातु पैति, जिनके घरों से पुष्कर लोचन भगवान, कमल लोचन भगवान जातु न अपैति, कभी भी बाहर नहीं जाते। प्रश्न होगा कि ये तो हस्तिनापुर कैसे आए हैं जब नहीं जाते हैं, तो स्त्रियां जानती हैं, उनको इस रहस्य का पता है कि भले हस्तिनापुर आए हैं लेकिन वहां पर उनके साथ एक एक रूप से हैं अभी भी, यह भगवान का ऐश्वर्य। ऐसा नहीं था कि भगवान के विरह में अब स्त्रियां मर रही हैं, कभी नहीं जाते हैं, उनके घर से बाहर होते ही नहीं है, इतना भगवान पसंद करते हैं अपनी पत्नियों को, घर में ही रहते हैं और उनकी मांग के अनुसार लाते हैं। जो सत्यभामा जी ने कह दिया कि हमको पारिजात वृक्ष चाहिए, फूल चाहिए स्वर्ग का, तो गए भगवान इंद्र से झगड़ा करके भी लाए वो घटना इस प्रकार की है कि जब भगवान ने नरकासुर का वध किया, भौमासुर का वध किया, माता अदिति का कुंडल और इंद्र का छत्र देने के लिए भगवान स्वर्ग गए, वो छीन लिया था, माता अदिति के कान का कुंडल छीन लिया था और इंद्र का छत्र छीन लिया, भगवान ने भौमासुर का वध किया। भौमासुर भूमि का लड़का था, उसका नाम था नरक, पता नहीं किस गुरु ने नाम दिया है नरक, उसको नरकासुर कहते तो उसका वध करके स्वर्ग गए, छत्र दिया और कुंडल दिया, उनका बड़ा स्वागत हुआ। सची जो इंद्र की पत्नी थी वो बड़े गर्व में थी और पारिजात के फूल की माला अपने केस पास में वो बांधी थी, तो उसके मन में आ रहा था ये तो मानवी है, मनुष्य की स्त्री है, देवता लोग अपने को बहुत हैर मानते हैं, बहुत ज्यादा, मनुष्य तो उनके सामने कुछ नहीं है, लेकिन सौंदर्य आदि में तेज में सत्भावना जो उससे बहुत बढ़ करके थे। वो सोच रहे थे कि कुछ भी हो, है तो मनुष्य ना, तो दिखा रहे थे बार अपने जुड़ों को, ऐसे दिखा रहे थे कि इतना फूल, ऐसा फूल तुम लोगों को नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। तो सत्यभामा जो तुरंत समझ गए, आदमी के व्यवहार से व्यक्ति समझ जाता है कि क्या किस गर्भ में है, या पृथ्वी पर पैर इसका पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो समझ में आ जाता है। सत्यभामा जी स्वर्ग में थी तो वो पानी पीना खाना छोड़ दी। श्री कृष्ण का स्वागत हो रहा था, हो रहा था, जब इनको लिए पानी आया, इनके लिए अमृत आया पीने के लिए, नहीं, भगवान पूछने लगे क्या बात है, क्यों रुठ गई, क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पारिजात का जो पुष्प है, वृक्ष है, ये द्वारका चलना चाहिए, यहाँ नहीं। बताइए, देवताओं से झगड़ा करके और वृक्ष लाना, ये बहुत कठिन काम था। फिर भगवान बड़े हर्ष से कहा ठीक है, गरुण जी को उन्होंने कहा, गरुण जी वो वृक्ष उखाड़ करके ले चलिए द्वारका। गरुण जी गए, गरुण जी के लिए एक वृक्ष उखाड़ने कौन बड़ी बात थी, उखाड़े और अपने हाथ में लटका करके चलने की तैयार। तब तक गार्डनर ओमाली अब जाकर कहे इंद्र से कि अरे वो सबसे अच्छा पुष्प वृक्ष उखाड़ करके ले जा रहा है गरुण, कृष्ण उस पर चढ़े हुए, कृष्ण की आज्ञा। इंद्र इतने धनांध हो गए थे, मदांध, कि ये सब देवताओं के साथ आए और भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, जो भगवान उनको सब कुछ दिए हैं। और यहाँ तक क्रोध में इंद्र देवता गरुण जी पर अपना वज्र मार दिए, गरुण का वध करने के लिए। जो मारे तो गरुण जी ने देखा कि वज्र अमोघ है, इस वरदान प्राप्त है, ये विफल नहीं होता है, इसलिए उसकी सत्यता की रक्षा के लिए गरुण जी अपने चोंच से अपना एक छोटा सा पंख नोचे और ऐसे हवा में उड़ा दिए, तो उसी को दो टुकड़ा कर दिया, तो उसकी अमोघता की रक्षा रह गई। यही हुआ, फिर बाद में वो कुछ भी नहीं हुआ, वो लेकर के आए पारिजात का वो वृक्ष, और उसके साथ भौंरे भी स्वर्ग से आ गए। भागवत में लिखा गया है स्वर्ग से भौंरे भी आ गए और द्वारका में वृक्ष लगाया गया। तो इस तरह से अपने वाइफ, अपने पत्नी के कहने से भगवान देवताओं से झगड़ा करके लाए। तो बिना झगड़ा के ही अगर शॉपिंग करना पड़ता होगा तो क्यों नहीं करें। ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, और वो भगवान को फुर्सत कहाँ है। अगर मनाना चालू करेगा तो 16,000 रूठे तो रोज मनाने में ही व्यस्त हूँ। राधा रानी इस बात को कहती है भ्रमर गीत में, कि जब भ्रमर गुनगुन कर रहा था चरण पर गिर करके, तो वो सोच रही है कि यह प्रियतम का दूत है, हमको मना रहा है। तो कहते हैं जाओ जाओ जाओ, हमको क्यों मनाने के लिए दूत भेजे हैं, जाकर कह दो उनको वे मथुरा की स्त्रियों को मनाया करें, उनको मनाया करें। और अभी एक के साथ भी विवाह नहीं हुआ था, राधा रानी की उठपटांग कल्पना थी, उनको ऐसा लगता था कि मथुरा की स्त्रियों से